ये आकाशवाणी दिल्ली है। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण कई इलाकों में जल संकट बरकरार। दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा में लगी भीषण आग, बचाव कार्य जारी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में शामिल हुए 1563 अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा 23 जून को होगी, जिन्हें परीक्षा में ग्रेस अंक मिले थे। हरियाणा के बल्लभगढ़ में 5.5 एकड़ जमीन में फैले 90 करोड़ रुपए की लागत वाले एक कोएड कॉलेज की रखी नींव। राजधानी में आज दिनभर कड़ी धूप के साथ गर्म हवाएं चली। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में जल संकट बरकरार है। शहर के करोलबाग, तुगलकाबाद, चाणक्यपुरी, गीता कॉलोनी, गांधीनगर, बवाना और बुराड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में पानी की समस्या बनी रही। इस बीच इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप दौर भी जारी रहा। दिल्ली सरकार जहां इस मसले पर पड़ोसी राज्य हरियाणा पर राजधानी में जलापूर्ति बाधित करने का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा का आरोप है कि ये संकट आम आदमी सरकार के गलत नीति के कारण है। इस मुद्दे पर आज दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आज तिहाड़ कारागृह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
शहर में जल संकट को लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। इस समस्या के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दक्षिणी दिल्ली मुख्य पाइपलाइन और अक्षरधाम में एक जलाशय का निरीक्षण किया। उन्होंने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि श्री केजरीवाल ने सभी विधायकों को निर्देश दिया है कि वो अपने इलाकों में जाकर पानी की समस्या का समाधान करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के साथ साथ एडीएम और एसडीएम की टीमों को भी विभिन्न इलाकों में जलापूर्ति पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है।
जो पानी हरियाणा से आता है उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस पहले 30% हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ करियर लाइन चैनल को बनवाया और उस ट्रांसमिशन लॉस को 30% से घटाकर 5% कर दिया। जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है लीकेज और वेस्टेज रोकने के लिए, पिछले 9 साल में 3,500 किलोमीटर लीक करती हुई पानी की पाइपलाइंस को रिप्लेस किया गया है।
दूसरी ओर भाजपा ने इस जल संकट पर आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान सांसद बासुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि मार्च में मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि दिल्ली को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसको देखते हुए भी दिल्ली सरकार ने पानी की समस्या को लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठाया।
आम आदमी पार्टी की सरकार की नीयत ही नहीं है दिल्ली को इस जल संकट से उभारने की, क्योंकि ये संकट प्राकृतिक नहीं है, ये संकट एक बनावटी संकट है जो स्वयं आम आदमी पार्टी ने बनाया है।
जल संकट के प्रति कांग्रेस ने भी आज सवाल उठाया और आया नगर में प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि शहर में पानी के पाइपलाइन के रिसाव की समस्या बढ़ती जा रही है, जिस पर दिल्ली सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श कुमार, आकाशवाणी नई दिल्ली।
दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र के मारवाड़ी कटरा में आज शाम भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने बताया कि आग शाम 5 बजे से लगी है। दमकल विभाग द्वारा अभी तक 15 दमकल गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा जा चुका है। इस भीषण आग पर काबू पाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में शामिल हुए उन सभी 1563 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी, जिन्हें परीक्षा में ग्रेस या पूरक अंक मिले थे। आज जारी एक अधिसूचना में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा कि वे शीघ्र ही एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगी और इन उम्मीदवारों से ईमेल के माध्यम से भी संपर्क करेगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें आधिकारिक सूचना प्राप्त हो। एनटीए ने कहा है कि दोबारा परीक्षा का निर्णय एनटीए के उच्चाधिकारी प्राप्त समिति की रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार लिया गया है। सभी 1563 छात्रों को दिए गए अनुग्रह या पूरक अंक वापस ले लिए गए हैं। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी परीक्षा के पेपर कथित तौर पर लीक होने की बात से इनकार किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि नीट परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री प्रधान ने नीट मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। नीट परीक्षा में कथित विसंगतियों पर श्री प्रधान ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी पैदा करने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि केंद्र उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में नीट परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और छात्रों को उनका वर्ष बचाने के लिए क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार के कार्य से नीट परीक्षा में शामिल हुए 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना उत्तरदायित्व राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ आईओए कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में राज्य मंत्री रक्षा खडसे और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने कहा कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं और खिलाड़ियों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर सभी सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ को इस बार टोक्यो ओलंपिक से भी ज्यादा पदकों की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में देश का रक्षा निर्यात बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करना है। आज अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए उन्होंने कहा कि भारत पहले ही 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा उपकरण निर्यात कर चुका है, जो ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि सरकार एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है और देश की सुरक्षा और सुरक्षा बलों का कल्याण उनकी प्राथमिकता बनी रहेगी।
भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है।
श्री सिंह ने मंत्रालय की पहले 100 दिनों की कार्य योजना पर एक समीक्षा बैठक की भी अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते हुए पूर्व सैनिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। हिंद महासागर क्षेत्र के बढ़ते रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए रक्षा मंत्री ने इस कार्यक्रम में अपनी पहली यात्रा के लिए विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान को चुना है। शिक्षा मंत्रालय ने विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पीएम पोषण के तहत मुफ्त पोषण संबंधी सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूलों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाएगा। इनमें मुफ्त पोशाक, पाठ्य पुस्तकें और प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन शामिल हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ताड़ासन का एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में इस आसन के करने से पहले होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताया गया है। वीडियो को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ताड़ासन शरीर के लिए बहुत लाभकारी है और इससे शरीर मजबूत और सुडोल होता है। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी के एमए कार्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून तक बढ़ा दी गई है। आईआईएमसी ने इस वर्ष मीडिया व्यावसायिक अध्ययन और सामरिक संचार का नया कोर्स शुरू किया है। ये दोनों कोर्स संस्थान के नई दिल्ली परिसर में पढ़ाया जाएगा और इसमें 40 सीटें उपलब्ध होंगी। हरियाणा के बल्लभगढ़ क्षेत्र में आज 5.5 एकड़ जमीन में फैले 90 करोड़ रुपए की लागत वाले एक कोविड कॉलेज की नींव रखी गई। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि शहीद भगत सिंह नामक इस कॉलेज को बल्लभगढ़ सेक्टर 23 में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज भव्य आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त रहेगा। कॉलेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्री शर्मा ने आशा व्यक्त की है कि इस कॉलेज के बनने पर बल्लभगढ़ सहित ग्रामीण इलाके के युवाओं को शिक्षा का लाभ मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी में आज दिन भर कड़ी धूप खिली रही और गर्म हवाएं भी चली, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा शहर के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रता से तेज हवाओं की भी संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार 15 जून से 30 जून तक एक धूल विरोधी अभियान चलाएगी। इसके अलावा हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सरकार की ग्रीष्मकालीन कार्य योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण का महाअभियान भी चलाया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस योजना के तहत औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए 35 टीमों का गठन किया गया है, जो औद्योगिक कचरे के सही तरीके से निपटान को सुनिश्चित करेंगी। श्री राय ने बताया कि सरकार ई कचरे की रोकथाम के लिए इको पार्क तेजी से तैयार कर रही है। वहीं पुनचक्रम में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार 2000 इको क्लब के द्वारा बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करेंगे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ राजधानी के जनपथ विकल्प हाट में जागरूकता अभियान चलाया। राष्ट्रीय सेवा योजना और व्याह वेस्ट वेंडेज संस्थान के साथ यह आयोजित किया गया। अभियान के तहत NDMC ने स्थानीय दुकानों को पुनर्चक्रित कपड़े के थैले निशुल्क वितरित किए। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल MIFF 15 से 21 जून तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ये फिल्म महोत्सव बिली एंड मॉली एंड ओटर लव स्टोरी जैसी फिल्मों की स्क्रीनिंग से प्रारंभ होगा। ये फिल्म 15 जून को दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में एक साथ प्रदर्शित की जाएगी। ये फिल्म रेड कॉर्पोरेट इवेंट के दौरान भी 17 जून को दिल्ली में, 18 जून को चेन्नई में, 19 जून को कोलकाता में और 20 जून को पुणे में प्रदर्शित की जाएगी। बिली एंड मॉली एंड ओटर लव स्टोरी 78 मिनट की अवधि की एक अंग्रेजी फिल्म है, जिसका निर्देशन चार्ली हैमिल्टन जेम्स ने किया है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सुदूर शेटलैंड द्वीप समूह में रहते हैं। मॉली नाम के एक जंगली ऊद बिलाव के साथ अप्रत्याशित दोस्ती कर लेता है। बिली एंड मॉली प्रेम की असीम गहराइयों और मनुष्य और प्रकृति के बीच के गहरे रिश्ते की पड़ताल करता है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण राज्य में बिजली की मांग अब तक की सबसे अधिक 29,820 मेगावाट तक पहुंच गई है। ग्रिड इंडिया पावर सप्लाई रिपोर्ट के अनुसार 10 जून को उत्तर प्रदेश ने 28,889 मेगावाट बिजली की सबसे अधिक आपूर्ति कर देश में पहला स्थान हासिल किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि महाराष्ट्र ने 24,254 मेगावाट, गुजरात ने 24,231 मेगावाट, तमिलनाडु ने 16,257 मेगावाट और राजस्थान ने 16,781 मेगावाट की मांग पूरी की। लेकिन उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने अपने मजबूत ऊर्जा बुनियादी ढांचे का प्रदर्शन करते हुए पीक आवर्स के दौरान सबसे अधिक बिजली आपूर्ति का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो पुलिस बल में भर्तियों को आउटसोर्स नहीं करने जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस कदम के लिए सरकार की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि ये आउटसोर्सिंग कंपनियों से पैसा उगाही का जरिया है। राज्य पुलिस में आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती का आधिकारिक पत्र वायरल होने के बाद अब यूपी पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण कई इलाकों में जल संकट बरकरार। दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा में लगी भीषण आग, बचाव कार्य जारी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में शामिल हुए 1,563 अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा 23 जून को होगी, जिन्हें परीक्षा में ग्रेस अंक मिले थे। हरियाणा के बल्लभगढ़ में 5.5 एकड़ जमीन में फैले 90 करोड़ रुपए की लागत वाले एक कोएड कॉलेज की रखी नींव। राजधानी में आज दिनभर कड़ी धूप के साथ चली गर्म हवाएं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।